जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय हो जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजगाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 13 अध्याय का नाम है पूर्ण पुरुष का आचरण और श्लोक संख्या 10। इसको 10 निकाल दीजिए। अच्छा तो मेरे पीछे बोले अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनीषुन्मत्त बालवन् कविर्मूक वदात्मान सदृष्ट्यादर्शयेन्द्रणाम् अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनीषुन्मत्त बालवन् कविर्मूक वदात्मान सदृष्ट्यादर्शयेन्निर्णाम् अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनीषुन्मत्त बालवत् कविर्मूक वदात्मानम् सदृष्ट्यादर्शयेन्निर्णाम् बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। अव्यक्त लिंग जिसमें सन्यास के लक्षण अव्यक्त हैं, व्यक्त अर्थ जिसका अभिप्राय प्रकट हो, मनीषी ऐसा महान संत पुरुष, उन्मत्त बेचैन, बालवत् संतान के तुल्य, कवि ही महान कवि या वक्ता, मुंह केवत गूंगे व्यक्ति के तुल्य, आत्मानं स्वयं सह वह दृष्ट्या उदाहरण से दर्शयेत प्रस्तुत करे नृणाम मानव समाज को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट ना करे, किंतु उसके आचरण से उसका प्रयोजन प्रकट हो जाता है। उसे मानव समाज के समक्ष अपने आप को एक चंचल बालक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विचारवान वक्ता होकर भी उसे अपने आप को मूक व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करना चाहिए। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे कथा वस्तु क्या है और इस श्लोक को भी समझेंगे। तो ये कथा वस्तु क्या है कि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को चार वर्ण और चार आश्रमों के कर्तव्यों का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पर सन्यास आश्रम के कर्तव्य का वर्णन कर रहे हैं और सन्यास आश्रम में भी जो सर्वोच्च अवस्था है परमहंस, तो परमहंस सन्यासी के कर्तव्य का वर्णन कर रहे हैं कि परमहंस सन्यासी की अवस्था बहुत ऊंची होती है, तो सामान्य जनता के बीच में उसे कैसे अपने को दिखाना चाहिए। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं दर्शे सदृष्ट्या दर्शे नृणाम, तो देखने में अपने को जो है इस प्रकार से दिखाना चाहिए, दृष्टिया मन दृष्टि, दृष्टि के द्वारा ऐसे दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, अपनी स्थिति नहीं दिखाना चाहिए, अपनी स्थिति क्या है, है ना। तो क्या कह रहे हैं नारद जी, अव्यक्त लिंगो, तो संन्यास के चिन्ह नहीं धारण करता, वो बहुत ऊंची अवस्था में आ गया तो संन्यास के चिन्ह भी धारण नहीं करता। अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थ हो, लेकिन उसका जो अर्थ है उसका जो अर्थ है संन्यास का जो अर्थ है वो प्रकट करता है। अव्यक्त लिंगो संन्यास के चिन्ह को प्रकट नहीं करता, लेकिन संन्यास का जो असली मतलब है वो प्रकट करता है। मतलब सांसारिक बातों में उसकी कोई रुचि नहीं होती, लोगों से हिलना मिलना घुलना ये सब नहीं, व्यक्तार्थ हो बिल्कुल अलग, समाज से बिल्कुल अलग रहे, उसका अर्थ क्या है, ये सब अनर्थ है, नहीं है उसके अंदर। संसारी लोगों के बीच में जो है मिलना जुलना बातें करना प्रजल्पा करना तो सब नहीं है, तो व्यक्त अर्थ हो उसका जो है अपना जो अर्थ है, अपने जीवन का असली अर्थ है, जीवन का अपनी जो असली जो स्वार्थ है, जीवन के जो असली लाभ है व्यक्त, वो जो है वो दिखाता है, व्यक्त अर्थ हो। फिर मनीषी उन्मत्त बालक, और मनीषी होते हुए भी उन्मत्त बालक की तरह दिखाए अपने को। मनीषी का मतलब बड़ा गंभीर, कोई व्यक्ति बड़ा गंभीर होता है ना, और मननशील होता है तो मनीषी कहलाता है, विचारवान है ना, मनीषी होते हुए भी उन्मत्त बालक की तरह अपने को दिखाता है। और कबीर मुंह के बदात्मानम, और कबीर होते हुए भी बहुत अच्छा वक्ता होते हुए बहुत विद्वान होते हुए भी अपने को दिखाना चाहिए क्या, मुंह के बद आत्मानम दर्शयेत, अपने को दिखाए गूंगे की तरह दिखाए, क्योंकि लोग जो सुनना नहीं चाहते हैं असली जो असली संदेश है भगवान का वो नहीं सुनना चाहते लोग, तो इतना विद्वान और इतना विद्वान होते हुए भी, कवि होते हुए भी, वक्ता होते हुए भी वो अपने को दिखाए गूंगे की तरह दिखलाए, सदृष्टिया दर्शे नड़ाम, तो सामान्य जनता के बीच में उसको इस प्रकार से दिखाना चाहिए, है ना। तो ये सन्यासी परमहंस की अवस्था में जो होते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कलयुग में जो सन्यास लिया जाता है, कलयुग में जो सन्यास लिया जाता है वो प्रचार के लिए लिया जाता है, लेकिन पहले की युगों में जो सन्यास लिया जाता था वो प्रचार के लिए नहीं लिया जाता था, तो वो इस प्रकार से सन्यास मानव समाज से बिल्कुल अलग होकर के रहेगा। तो ये जो है दूसरे युगों में सन्यास, और वो भी परमहंस अवस्था में कोई पहुंच जाए तो वो इस प्रकार से उसको रहना चाहिए। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी परमहंस सन्यासी है ना, हम बोलते हैं ना जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, परमहंस सन्यासी प्रभुपाद भी हैं, लेकिन वो तो ऐसा नहीं दिखाते, क्यों, कि कलयुग में जो सन्यास होता है तो परमहंस की अवस्था में भी जो सन्यासी हैं वो प्रचार करते हैं, कलयुग में सन्यास लिया जाता है प्रचार के ही लिए। लेकिन यहाँ जो नारद जी बताते हैं दूसरे युगों की बात है, और ये द्वापर युग की बात है, द्वापर युग की घटना है जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो सन्यासी को ऐसा दिखाना चाहिए समाज के भीतर। तो पहले के युगों में क्या था कि राजा लोग ही प्रचार करते थे प्रजा में, और राजाओं की ओर से जब जो है दबाव होता था शासन की ओर से दबाव होता था कि धर्म का पालन करना है, तो फिर प्रजा जो है अधर्म नहीं कर सकती थी। अधर्म कोई करे तो उसको दंड देगा राजा। राजा की जिम्मेदारी होती थी कि प्रजा के इस लोक में और परलोक में रक्षा करे। तो वो राजा जो है थे उस समय युधिष्ठिर महाराज राजा थे, राजर्षि। तो राजर्षियों का जब शासन होता है तो सन्यासी को फिर जो है प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो सन्यासी के लिए यही है, परमहंस सन्यासी बिल्कुल अलग, समाज से बिल्कुल अलग हो और अपने को इसी प्रकार से दिखाए। तो ये चीज जो है मतलब यहाँ पर बताई गई है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में अत्यंत उन्नत महापुरुष कदाचित अपने आप को सन्यासी के चिन्हों से ना भी प्रकट करे, है ना। तो सन्यासी के चिन्ह नहीं धारण करता, है ना। तो जैसे भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव तो उन्होंने सन्यास लिया, है ना। तो फिर कैसे घूमते थे, उन्मत्त पागल की तरह घूमते थे और सामान्य जनता जो है उनको जो है निंदा करते, लोग निंदा करते थे या उनके ऊपर थूक भी देते, गाली देते, और वो अपने को उन्मत्त दिखाते, बिल्कुल पागल की तरह दिखाते और बिल्कुल गूंगे की तरह व्यवहार करते थे। तो ये जो है स्थिति है, या सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी जो है कैसे दिखा रहे हैं अपने को, बिल्कुल नग्न, है ना, और बिल्कुल जो है बाल बिखरे हुए हैं, हैं, और बिल्कुल गूंगे हैं, और स्त्रियां हैं, बच्चे उनके पीछे भी चल रहे हैं, हैं, और हल्ला कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, और वो जो है प्रसन्न है, उसी में ही प्रसन्न है। तो सुखदेव गोस्वामी हैं ऐसे स्त्री और बच्चों से घिरे हुए थे जो निम्न स्तर के थे। और जब वहां पर पहुंचे परीक्षित महाराज की सभा में सब ऋषि मुनि, तो वहां पर उनके लिए आसन तैयार था, व्यासन पर उनको बिठाया गया। तो जो स्त्री और बालक जो थे उनको घेरे हुए थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो इनकी कितनी ऊंची स्थिति है, वहां यहाँ स्वागत हो रहा है, तो लौट के चले गए। तो जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके बीच में अपने को जो है वो पागल की तरह दिखाए, गूंगा, जड़ भरत है, महाराज जड़ भरत थे तो बहुत ऊंची अवस्था में थे, फिर कैसे दिखाते थे, बोलते ही नहीं थे, कोई बात ही नहीं करते थे कुछ, है ना। तो उनकी उनकी भी सब लोग निंदा ही करते थे या जो है तिरस्कार करते थे, और जड़ बोलते थे, जड़ उनका कुछ भी नाम हो लेकिन सब लोग उनको जड़ बोलते थे। भरत तो पिछले जन्म के हैं का नाम था, तो भरत तो हम बोलते हैं जड़ भरत, लेकिन उनको जड़ बोलते थे। जड़ माने जो मूर्ख हो और बिल्कुल गया गुजरा महा नालायक है, जो कि किसी काम का नहीं, उसको जड़ बोलते हैं। तो जड़ बोलते थे सब लोग उनको भरत नाम, तो हम लोग बोलते हैं कि वो भरत महाराज हैं, तो जड़ भरत नाम बोलते हैं। तो वो भी इसी प्रकार से जो है अपने को दिखाते थे। राजा रहुगण को जब ज्ञान दिया तो फिर पता चला कि कितनी ऊंची स्थिति में है, कितने विद्वान और कितने बड़े वक्ता पता चला। तो अपनी विद्वत्ता और अपना वक्तृत्व वो जो है प्रकट नहीं करते हैं सामान्य जनता के बीच में। इन कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में संन्यास होता है प्रचार के लिए। चैतन्य महापुरुष ने संन्यास लिया प्रचार के लिए और सम्मानित होने के लिए, सम्मान पाने के लिए। यहाँ तो यही है कि भाई सम्मान वो पाता ही नहीं है, वो सबसे तिरस्कार ही पाता है, उसको तिरस्कार ही पाना चाहिए। ये सन्यासी चैतन्य महापुरुष सन्यास लिया था सम्मान पाने के लिए, उनका कोई सम्मान करेगा, सन्यासी के रूप में भी सन्यास करेगा तो अभी उसको जो है उसकी रक्षा हो जाएगी। भगवान है तो अपने को भगवान के रूप में छिपा रहे हैं, सन्यासी के रूप में भी कोई उनका सम्मान करेगा, अपने से कुछ अच्छा मान करके भी उनका सम्मान करे तो उसकी बड़ी रक्षा होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सम्मान पाने के लिए सन्यास लिया प्रचार करने के लिए, है। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल अलग है, नित्यानंद प्रभु उस प्रकार के सन्यासी हैं जो कलयुग से पहले के सन्यासी होते थे, बिल्कुल पागल और जो है चंचल बालक की तरह चेष्टाएं करते हैं, उनकी हम चेष्टाएं सुनेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कदाचित अपने आप को सन्यासी के चिन्हों से भी चिन्हों से ना भी प्रकट करे, अपने आप को छिपाने हेतु वह चंचल बालक या मूक व्यक्ति के समान भी रह सकता है, यद्यपि वह सर्वश्रेष्ठ वक्ता या कवि होता है। तो यह प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और इस श्लोक का जो है जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आश्रम चिन्ह भले ना हो, आश्रम चिन्ह भले ना हो, आत्म अनुसंधान करे, आत्म अनुसंधान करे, हो तो अति विचारवान पर बालक सम ही जान पड़े, हो तो अति विचारवान पर बालक सम ही जान पड़े। अति प्रतिभाशाली वो हो, अति प्रतिभाशाली वो हो, लेकिन उन्मादी सा दिखे, लेकिन उन्मादी सा दिखे, हो तो अति विद्वान वह है, हो तो अति विद्वान वह है, लेकिन मूक जैसा दिखे, लेकिन मूक जैसा दिखे। तो ये कर्तव्य बता रहे हैं नारद जी, परमहंस सन्यासी के कर्तव्य बता रहे हैं। दर्शय दिए ऐसा करना चाहिए, उसका ये कर्तव्य है कि सामान्य लोगों के बीच में उसको ऐसा दिखाना चाहिए, है ना। तो अब हम यहाँ तात्पर्य समाप्त हुआ, अब हम सुनेंगे नित्यानंद प्रभु की जो है कैसी चंचलता है। जिस समय नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे थे, भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे, तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, केवल चैतन्य महाप्रभु जो नवदीप में हैं तो उनका ही केवल प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो जो है मुझे बुलाना चाहेंगे। तो मथुरा वृंदावन में निवास करते थे और प्रतीक्षा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु कब बुलाएंगे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया तो तुरंत ही वहाँ नवदीप में पहुँच गए और नंदन आचार्य के घर में ठहरे। तो वहाँ पर भी बड़ी स्थिति उनकी अलग ही थी, तो वो और लेकिन उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने इनको ठहरा दिया श्रीवास के घर में, श्रीवास जी के घर में ठहरा दिया। तो नित्यानंद जी श्रीवास के घर में ठहरे थे और निरंतर बाल भाव में रहते, निरंतर बालक के भाव में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, उन्मत्त बालवत, मनीषी उन्मत्त बालवत, उन्मत्त बालक के समान, है ना, चंचल बालक के समान, है ना। तो बालक भाव में रहते हैं, कोई दूसरा भाव उनमें उठता ही नहीं, बालक के भाव में रहते हैं, है ना। तो श्रीवास जो है मानो उनके पिता हैं, और मालिनी जो श्रीवास की पत्नी है मानो उनकी माता हैं। तो जैसे छोटा बालक, जबकि हैं कितनी उम्र के, 32 साल के हैं, 32 साल के हैं, लेकिन बिल्कुल छोटा बालक की तरह वो जो है चेष्टा करते हैं। नित्यानंद रही लेन श्रीवासी रे घरे, निरंतर बाल्य भाव, निरंतर बाल्य भाव आरे नाही स्फुरे। कोई दूसरा भाव उनमें उठता ही नहीं था, वे अपने हाथ से उठाकर भात भी नहीं खाते, जैसे बच्चा होता है अपने हाथ से नहीं खाता, माँ के सामने करता है कि तुम खिलाओ, तो नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से भात भी नहीं खाते, मालिनी माता के सामने ऐसे करते हैं, है? तो मालिनी देवी श्रीवास की पत्नी उनको पुत्र के समान समझकर अपने हाथ से भात खिलाती। पतिव्रता मालिनी देवी नित्यानंद के आचरण के मर्म को जानती हैं कि कितने जो है दयालु हैं और पुत्र का सुख दे रहे हैं, तो मालिनी देवी जो है मानती हैं, उनकी इस प्रकार सेवा करती जैसे माता पुत्र की करती है। आपने तो लिया हाथ भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करे अन्य मालिनी जो गाए, नित्यानंद अनुभव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे जैन पुत्र माता। अब नित्यानंद क्या करते हैं, घर में रहते हैं श्रीवास के, लेकिन फिर घर से निकल जाते हैं तो क्या करते हैं, नदिया नगर में सर्वत्र घूमते फिरते हैं, जैसे एक बच्चा होता है तो एक स्थान में ठहरता नहीं, वो हमेशा घूमता रहता है, तो नदिया नगर में सर्वत्र घूमते रहते हैं। और कभी गंगा की मझधार में पहुंचने पर तैरना बंद कर देते हैं, गंगा की बीज धारा में पहुंच गए तो तैरना बंद कर देते हैं, और प्रबल धारा में बड़े आनंद से बहे चले जा रहे हैं। अब कोई डरेगा कि क्या हो रहा है, भयभीत हो जाए, देख करके भयभीत हो जाएगा, कभी सब बालकों के साथ खेलने लगते हैं, छोटे बालकों के साथ खेलने लगते हैं, तो कभी मुरारी गुप्त के घर चले जाते हैं, कभी दौड़ते हुए प्रभु के घर जा पहुंचते हैं। दौड़ते हुए कहां, भगवान चैतन्य के घर में पहुंच जाते हैं। उनको देखकर सच्ची माता बड़ा स्नेह करते हैं, जैसे अपना छोटा बच्चा हो, सच्ची माता स्नेह करते हैं इनको देख करके। और बाल्य भाव में नित्यानंद सच्ची माता के चरण पकड़ने लगते तो वे दूर भाग जाती, सच्ची माता दूर भाग जाती, बालक भाव में सच्ची माता के चरण पकड़ने लगते हैं। बाल्य भावे नित्यानंद आई रे चरण धरे मारे जाए आई करे पलायन। अब श्रीवास के घर में ही नित्यानंद का निवास है और श्रीवास को पिता कहकर उनसे स्नेह करते हैं। नित्यानंद प्रभु श्रीवास को पिता कहकर स्नेह करते हैं। नित्यानंद दिन रात बाल्य भाव के आवेश में बाहरी ज्ञान से रहित रहते हैं, बालक के भाव में बाहरी ज्ञान से रहित रहते हैं और बार बार श्रीवास की पत्नी मालिनी का स्तनपान करते हैं, श्रीवास की पत्नी का स्तनपान करते हैं बार बार। यद्यपि मालिनी के स्तनों में लेस मात्र भी दूध नहीं होता, तथापि नित्यानंद के स्पर्श मात्र से दूध भर आता है। स्पर्श करते तो स्तन में दूध आ जाता है। श्रीवासे रे घरे नित्यानंदे वसती बाप बलि श्रीवासे रे करे पीरीति आहरने से बाले भावे बाहे नहीं जाने ने रे वध मालनी रे कर स्थान पाने कबू नहे दुग्ध पारा सीले मात्र है ये सब अचिंत शक्ति मालिनी देख है। उनकी इस अचिंत शक्ति को मालिनी देखती हैं, माता देखती हैं, परंतु वे किसी से कहती नहीं है, क्योंकि प्रभु विश्वंभर ने इनको मना कर रखा था कि नित्यानंद के इस प्रभाव को किसी को बताना नहीं, कोई ना जाने नहीं तो नित्यानंद की पूजा करने लगेंगे सब लोग और उनका जो अपना जो भाव है उसमें फिर बाधा आएगी, है ना। तो मालिनी जो है किसी को नहीं बताती नित्यानंद के प्रभाव को, और जो उनके स्तन में दूध कैसे आ जाता है, वो दूध पीना चाहते हैं तो स्तन में दूध आ जाता है मालिनी के स्तन में, है ना। तो नित्यानंद को सदा शिशु रूप में देखते हैं मालिनी, तो वो जो सुख प्राप्त करते हैं मालिनी उनका इतना सौभाग्य है। कभू नहीं दुख दे पारा सीले मात्र है ये सब अचिंत शक्ति मालिनी देख है चैतन्य रहने वारण का रोए न कहे ने रवद स्वरूप मालिनी देख। अब एक दिन विश्वंभर प्रभु बोले, विश्वंभर मतलब कौन, चैतन्य महाप्रभु। एक दिन विश्वंभर प्रभु बोले सुनो नित्यानंद, तो बड़ा जो है ये रोचक प्रसंग है और हंसाने वाला है। तो चैतन्य कहते हैं सुनो नित्यानंद आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, समझा रहे हैं, सुनो नित्यानंद आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और श्रीवास के घर पर भी चंचलता नहीं करना। बोलते हैं चैतन्य मना करते हैं कि किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना और श्रीवास के घर में चंचलता नहीं करना। तो ये सुनकर नित्यानंद जी श्री विष्णु विष्णु कहकर स्मरण करने लगे। श्री विष्णु मतलब कि तो बिल्कुल गलत बात है, मैं थोड़ी ऐसे करता हूं, तो ऐसे श्री विष्णु कहकर के बोलने लगे। उन्होंने कहा आप कभी मुझमें चंचलता नहीं पाओगे। बोलते हैं आप मुझमें कभी चंचलता नहीं पाओगे, आप अपने जैसा किसी को मत समझो। उनके ऊपर ही दोष डाल दिया, आप अपने जैसा आप अपने जैसा किसी को मत समझो। तो विश्वंभर देव बोले मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, विश्वंभर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। नितन बोले तो बताओ मेरे दोस्त सुनो तो, नितन कहते तो बताओ मेरे दोस्त सुनो तो। गौरचंद हंसकर बोले तुम्हारा क्या दोष, दोष यही है कि सारे घर भर में तुम भात फैला देते हो, पूरे घर भर भात फैला देते हो। हमारे चंचल ले तुम्हें काबू ना पाई वा, अपना रे मत तुम्हें कारो ना बसी वा। विश्वंभर बोले आमी तो माँ भाले जानी, नित्यानंद बोले दोष कहा देखी सुनी। हासी बोले गौर चंद्र की दोष है तुम्हार, सब घरे अन्य वृष्टि करे अवतार। नित्यानंद बोले ऐसा तो पागल किया करते हैं। नित्यानंद बोले मैं तो थोड़ी पागल हूं, मैं थोड़ी पागल हूं। तो बोले ऐसा तो पागल किया करते हैं, अच्छा इसी बहाने से आप मुझे अपने घर में भात नहीं खिलाओगे। तो चैतन्य के ऊपर जो है और आरोप लगा दिया कि ये कह करके असली इरादा यह है कि मुझे घर में खिलाना नहीं चाहते हो तुम, और मेरे ऊपर ये दोष बताते हो। तो मेरे अंदर तो दोष है नहीं, मेरे अंदर दोष बता करके अपने घर में तुम भात नहीं खिलाना चाहते हो। तो ये सब आरोप जो है नित्यानंद ने चैतन्य के ऊपर कर दिया। अच्छा मत खिलाओ मुझे, मत खिलाओ मुझे, ना देकर आप अकेले मौज से खाओ। नित्यानंद कहते हैं मुझे मत खिलाओ, आप अकेले मौज से खाओ, लेकिन इस अपयश को क्यों करते फिरते हो कि नित्यानंद घर भर में अन्न फैला देता है। अगर मुझे अपने घर में नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, लेकिन ये बदनाम क्यों कर रहे हो मुझको कि नित्यानंद कि नित्यानंद सब घर में भात फैला देता है। नित्यानंद बोले यह पागल है से करे, ये छला ये घर है भात ना दीवे आमारे, आमारे ना दिया भात सोखे तो में खाओ, आप कीर्ति आर के ने बलिया बेड़ाओ। ऐसा कहने से मुझे कोई अन्न नहीं खिलाएगा। नित्यानंद कहते हैं अगर ऐसा कहोगे तो कोई मुझे अपने घर में अन्न नहीं खिलाएगा, इसमें आपका तो अपयश फैलेगा। क्या बोले नित्यानंद, इसमें आपका ही अपयश फैलेगा। तो नित्यानंद का भाव यह है कि मैं तो तुम्हारा हूं, अब बुरा हूं जो भी हूं, अगर मेरी बुराई करोगे तो यह भी तुम्हारी बुराई है, तो अपनापन है ना। नित्यानंद कहते हैं कि जो भी बुराई मेरे अंदर है ना, तो अगर तुम बताओगे दूसरों को तो तुम्हारी ही बुराई मानी जाएगी कि मैं तो तुम्हारा हूं, इसलिए अपनी बुराई क्यों बता रहे सबको। तो नित्यानंद जो है बोल रहे हैं कि इससे आपका अपयश फैलेगा, तो सब लोग जानते हैं मैं तो आपका ही हूं, है ना, इससे आपका अपयश फैलेगा। प्रभु बोले तुम्हारा अपयश आकर मुझे लगता है, प्रभु बोले तुम्हारा अपयश आकर मुझे लगता है, इसीलिए तो मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं। भगवान कहते हैं इसीलिए तो मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं। प्रभु बोले तुम्हार अब कीर्ति आमी पाई, से इता कारण है आमी तुम्हारे सिखाई। अच्छा तब नित्यानंद हंसकर बोले अच्छा बहुत अच्छा, चंचलता देखने पर सदैव शिक्षा देते रहना। बोले चंचलता देखने पर सदैव शिक्षा देते रहना, आपने ठीक ही कहा, मैं तो चंचल हूं ये कहा। इतना कहकर प्रभु की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े और बाहर की कुछ शुद्ध बुद्ध ना रही और क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, झट नग्न हो गए, तुरंत नग्न हो गए, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना तुरंत ही नग्न हो गए। तो कह रहे हैं कि चंचलता देखने पर शिक्षा देते रहना, और तुरंत ही जो है चंचलता कर दी, नग्न हो गए, वस्त्र को लेकर सिर पर लपेट लिया। अधो वस्त्र है सिर पर लपेट लिया, सिर पर लपेट लिया, और दोनों पांवों को मिलाकर जोर से उछलने कूदने लगे, दोनों पांवों को मिला करके जोर से उछल रहे कूद रहे। हंसते हुए झूमते झामते सारे आंगन भर में घूमने फिरने लगे। हंसी बोले नित्यानंद बड़े भाले भाल, चंचल ने देखी ले सिखाई वह सर्वकाल, निश्चय बली लतो में आमिता चंचल, एते बली प्रभु चाहे हास खल खल, आनंद न जाने बाहे कर्म कौन करे, दिगम्बर हई वस्त्र बांधी ले न शिरे, जोड़े जोड़े लाफ दे हासिया हासिया, सकल अंगन ने बोले ढोलिया ढोलिया, गदाधर श्रीनिवास हसे हरिदास, शिक्षा रे प्रसाद सब देगे देगे वास। तो गदाधर हंसने लगे और श्रीवास पंडित हंसने लगे, हरिदास जी हंसने लगे, देखो प्रभु ने तो इनको चंचलता ना करने की शिक्षा दी, परंतु उसका फल ये हुआ उल्टा कि दिगंबर बने घूम रहे हैं। तब विश्वंभर प्रभु ने जोर से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, गृहस्थियों के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। जोर से बोले चैतन्य, ये क्या कर, गृहस्थियों के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। अभी तो तुमने कहा था मैं क्या पागल हूं, और अभी क्षण भर में अपनी सब बात मिटा दी और पागल बन गए। भगवान बोल रहे ढाके बोले विश्वंभर, एक ही कर्म कर्म गृहस्थे रे बाड़ी ते ये मत ना है धर्म, ये खाने वाली लतों में आमे की पागल, ए छाड़े न जेवा के घोची ले सकल। परंतु जिसे बाहर की कुछ खबर ही नहीं, उसको किसी की बातों या ताना से शर्म कहाँ है, उनको तो कुछ होश ही नहीं है। नित्यानंद जो है आनंद में है, नित्य आनंद में जो है डूबे हुए हैं, तो उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि चैतन्य क्या बोल रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। नित्यानंद आनंद सागर में बहे जा रहे थे, तब प्रभु ने स्वयं उन्हें पकड़कर वस्त्र पहनाया। भगवान स्वयं पकड़ करके उनको वस्त्र पहनाते हैं। नित्यानंद का चरित्र ऐसा अचिंत्य दुर्गम है। नित्यानंद एक मत सिंह के समान है, जो चैतन्य चंद्र के वचन को ही मानते हैं और कुछ नहीं जानते। अपने अपने आप तो हाथ उठाकर मुंह में भात भी नहीं खाते। जा रे बाहे नाए तार बचन की लाज, नित्यानंद भाषा आनंद सिंधु माच, अपने धरे प्रभु पराए बसन, ए मत अचिंत नित्यानंद रे कथन, चैतन्य रे बचन अंकुश मात्र माने, नित्यानंद मत सिंह आर नहीं जाने। मालिनी ही पुत्र की भांति उनके मुख में अन्न देती है। नित्यानंद के कार्य और उनके मर्म को पतिव्रता मालिनी देवी जानती है, और माता जैसे पुत्र की सेवा करती है उसी प्रकार वे नित्यानंद की सेवा करती हैं। नित्यानंद अनुभव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा कर जाने पुत्र माता। फिर एक लीला होती है कि घर से जो मालिनी ने घी की कटोरी रखी थी घर के अंदर, तो कौवा उठा करके ले गया, तो नित्यानंद प्रभु ने कौवे को जब आज्ञा दी कि कटोरी ले आओ, तो उड़ करके चला गया कहीं पर। अब कहाँ चला गया, और कुछ देर के बाद आया तो कटोरी चोंच में ला दबा करके और घर में छोड़ गया। तो मालिनी ने फिर स्तुति की नित्यानंद की, तो आप तो भगवान हैं, आप सबके हृदय में अंतर्यामी हैं, तो इस तरह से स्तुति करे। तो स्तुति सुनकर के हंसे बाल भाव में, जैसे बच्चे की स्तुति करो तो वो क्या करे, हंसेगा वो तो कुछ समझेगा नहीं। तो मालिनी देवी स्तुति कर रही है लेकिन हंसे और बाल भाव में बोले मैं भोजन करूंगा, नित्यानंद को देखने पर उनके स्तन बहने लगे। अब मालिनी के स्तन बहने लगे, स्नेह में स्तन बहने लगे मालिनी के, और बाल भाव में नित्यानंद स्तन पीरने लगे, मालिनी का स्तन पीने लगे। इस प्रकार नित्यानंद के चरित्र अचिंत्य हैं, उन्हें मैं क्या कहूं, वे जगत प्रसिद्ध हैं। ऐसे दुर्व्यज्ञ कर्म करते हैं जो अलौकिक होते हैं, उनके तत्व को जो जानते हैं उनको सत्य मानते हैं। नित्यानंद दिन रात परम उन्मत्त बने नदिया में घूमते रहते हैं। इसमें क्या उन्मत्त बालवत, इस श्लोक में क्या है उन्मत्त बालवत, तो परम उन्मत्त बने हुए नदिया में घूमते रहते हैं। नित्यानंद देखी ले ताहार स्तन झरे, बाल भावे नित्यानंद स्तन पान करे, हे मत अचिंत नित्यानंद रे चरित्र, आमे की बलि वे सर्व जगत विदित, आहर से भाव भावावे से पारा में उद्दम, सर्व नदी आए बोले ज्योतिर्मय धाम। नित्यानंद को कोई योगी कहे, कोई ज्ञानी कहे, जिसकी जो इच्छा हो क्यों ना कह ले, वे सब है चैतन्य के नित्यानंद जी, जो कुछ भी क्यों ना हो तथापि उनके चरण धन मेरे हृदय में निवास करें। ये वृंदावन दास ठाकुर अपनी ओर से कह रहे हैं कि नित्यानंद के चरण धन मेरे हृदय में निवास करें। तथापि इतना विनम्र आग्रह करने पर भी जो पापी उनकी निंदा करता है तो उसके माथे पर लात मारूंगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं तो मैं उसके माथे पर लात मारूंगा। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु श्रीवास के घर में निवास करते हैं और गौरांग प्रभु उनकी निरंतर रक्षा करते हैं। यति परिहारे वो जे पापी निंदा करे तबेला थी मारो तार सिरे रे ऊपरे ए मत आछे प्रभु श्रीवासे रे घरे निरवधि अपने गौरंग रक्षा करे। अब एक घटना क्या हुई, एक दिन प्रभु विश्वंभर अपने घर में लक्ष्मी जी के साथ परम सुंदर रूप से विराजे हुए हैं। लक्ष्मी जी कौन है, विष्णुप्रिया। तो लक्ष्मी जी के साथ परम सुंदर रूप में विराजे हैं और लक्ष्मी जी तांबूल अर्पण कर रही हैं और आनंद में दिन रात भूली रहती हैं। जिस समय विश्वंभर लक्ष्मी जी के साथ रहते तो सची माता के हृदय में बड़ा आनंद होता है। माता के चित्त के सुख की मां जानकर प्रभु लक्ष्मी जी के साथ बैठे रहते। ऐसे समय पर एक दिन आनंद में भेवल परम चंचल नित्यानंद प्रभु के घर में आ पहुंचे। इनका कोई नियम नहीं है, जब इच्छा वो आ जाए। तो बड़े चंचल हैं, आनंद में बहुत चंचल हैं और प्रभु के घर में आ पहुंचे। आकर बाल्य भाव में दिगंबर होकर खड़े हो गए। अब वहां पर लक्ष्मी जी भगवान के साथ और बालक भाव में दिगंबर होकर खड़े हो गए। प्रेम आवेश में चूर हैं, किसी की लज्जा शर्म तो है ही नहीं। ये देखकर प्रभु बोले, नित्यानंद दिगंबर कैसे हो। बोले दिगंबर कैसे हो, दिगंबर मतलब नग्न, दिगंबर कैसे हो। प्रभु बोले, नित्यानंद केने दिगंबर, नित्यानंद हाय हाय कर हाय उत्तर। नित्यानंद ने कहा, हाँ हाँ। उसे दिगंबर कैसे हो है? तो क्या बोले, हाँ हाँ। उन्हें कुछ होश ही नहीं है, है? तो बोले हाँ हाँ। प्रभु बोले, नित्यानंद वस्त्र पहनो। नित्यानंद बोले, आज मैं जाऊंगा। अब वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ उत्तर दे रहे हैं। नित्यानंद बोले, आज मैं जाऊंगा। तो प्रभु बोले, नित्यानंद ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वे बोले, अब और नहीं खा सकता। अब और नहीं खा सकता। प्रभु बोले, एक बात छोड़कर दूसरी बात क्यों करते हो। तो वे बोले, मैं 10 बार गया था। तब प्रभु क्रोधित होकर बोले, मेरा दोष नहीं है। नित्यानंद बोले, यहां मां नहीं है। फिर प्रभु बोले, कृपा करके वस्त्र तो पहनो। नित्यानंद बोले, मैं भोजन करूंगा। इस प्रकार नित्यानंद चैतन्य के भाव में मतवाले बने हुए हैं, भगवान के प्रेम में मस्त है वो बिल्कुल। तो ये कहे उन्मत्त बालक के समान है। प्रभु बोले, नित्यानंद परह बसन। नित्यानंद बोले, आज आमारे गमन। प्रभु बोले, नित्यानंद इहा केने करी। नित्यानंद बोले, आर खाई ते न पारी। प्रभु बोले, एक एडी कहा केने आर। नित्यानंद बोले, आमे गेलू 10 बार। क्रुद्ध है बोले, प्रभु मोर दोष नाई। नित्यानंद बोले, प्रभु एथा नाही आई। प्रभु बोले, प्रभु कहे कृपा करी पाना है बसन। नित्यानंद बोले, आमे करी वे भोजन। सुनते कुछ और कहते कुछ और हंसते फिरते हैं, हंसते। तब प्रभु ने उठकर स्वयं उनको वस्त्र पहनाया। अब अपने हाथ से वस्त्र थोड़ी पहनेंगे, जैसे बच्चा होता है अपने हाथ से कपड़े थोड़ी पहनता है। तो प्रभु ने उठ करके स्वयं उनको वस्त्र पहनाया, परंतु नित्यानंद को भारी ज्ञान कहाँ, वे तो हंस रहे हैं। वस्त्र पहना दिया तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वस्त्र नहीं पहने तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, निरंतर हंस रहे हैं। चैतन्य रे भावे मत नित्यानंद राय, एक सुने आर कहे हसिया बेड़ाए। नित्यानंद के चरित्र को देखकर सची माता हंसती हैं, सची माता हंसती हैं और मन ही मन उनको विश्वरूप जैसा पुत्र मानती हैं कि मेरा ही पुत्र है ये, सची माता सोचती हैं। उसी विश्वरूप जैसे वचन इनके मुख से भी सुनती हैं और बीच बीच में उसी का रूप भी सची माता केवल देख पाते हैं, केवल सची माता देख पाते हैं कि विश्वरूप तत्व एक ही है। विश्वरूप और नित्यानंद एक ही तत्व हैं, चैतन्य के बड़े भाई हैं, है ना। तो सची माता देखते हैं विश्वरूप को नित्यानंद में और केवल सची माता ही देख पाते हैं। हाँ, पुत्र जैसा स्नेह करती हैं, सची माता किसी से नहीं कहती हैं। पुत्र जैसा उन पर स्नेह करती हैं, वो स्नेह भी नित्यानंद और विश्वंभर पर समान होता था। थोड़ी देर बाद बाहरी शोध आने पर नित्यानंद ने वस्त्र पहने, फिर सच्ची माता ने संदेश लाकर दिए, खाने को संदेश दिए। अब होश में आ गए तो वस्त्र पहन लिए नित्यानंद ने, और सच्ची माता ने संदेश ला करके दिए, खाने को दिए। माता ने माता से छेना से बने हुए 5 संदेशों को पाकर नित्यानंद ने एक तो खा लिया और 4 को फेंककर बिखेर दिया। जैसे बच्चा होता है ना, हाँ, एक एक खिलाओ, है ना, ये क्या इकट्ठे दे दिए मुझे, बच्चा होता है ना। तो जब माता खिलाती है तो एक खा ले तो फिर दूसरा खिलाएगी, है ना, तो ये क्या इकट्ठा दे दिए, एक खा लिया और 4 फेंक दिए। माता बोली, हाय हाय, ये तुमने क्यों फेंक दिए। नित्यानंद बोले, तुमने इकट्ठे इतने क्यों दिए, इकट्ठे क्यों, बच्चे को जो है इकट्ठे क्यों दिए, है ना, इकट्ठे क्यों दिए। माता बोली, और तो है नहीं, अब क्या खाओगे। बोले, देखो सही, अवश्य और होंगे। नित्यानंद बोले, देखो अवश्य और होंगे। माता ने भीतर जाकर क्या देखा, वे 4 संदेश भीतर रखे हैं, वे 4 फेंक दिए थे बाहर, वो 4 संदेश भीतर रखे हैं। माता ने देखा, माता ने बोली, अरे वे संदेश ना जाने कहाँ जाकर पड़े थे, घर के भीतर कौन से रास्ते से फिर ये आ गए। सची माता कहते हैं, ये देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और संदेशों को उठाकर झाड़ पहुंच करके ले आई। आकर क्या देखते हैं, नित्यानंद उन्हीं फेंके संदेशों को खा रहे हैं, फेंके संदेशों को खा रहे हैं। अब वो फेंके संदेश हैं उनको उठा के खा रहे हैं, नित्यानंद खा रहे हैं। माता ने पूछा, बेटा ये कहाँ से आ गए। नित्यानंद बोले, वही तो हैं जो मैंने फेंक दिए थे, तुम्हें दुखी देखकर मैं उनको उठा लाया, तुमने दुख माना तो मैंने उठा लिए। ये अचरज देखकर माता मन ही मन सोचते, नित्यानंद की महिमा कोई नहीं जानता है, नित्यानंद की महिमा कोई नहीं जानता है। माता बोली, नित्यानंद तुम मुझे क्यों भुलाते हो, मैं जान गई तुम ईश्वर हो। बोली माता, अब आगे मेरे आगे माया मत चलाओ। तब नित्यानंद बाल भाव में माता के चरण पकड़ने को दौड़े तो माता भाग गई। हरिओ हसी देखे नित्यानंद से ही लड्डू खाए, आई बोले बाप माई न को थाए। नित्यानंद बोले, जहाँ छलाई फैली लू तोरे दुख देखी ताई चाही या आनी लू। अद्भुत देखी या आई मने मने गणे, नित्यानंद माही मना जाने को न जाने। इस प्रकार नित्यानंद के चरित्र अगाध हैं, जो पुण्यात्माओं के लिए शुभकारी हैं और दुष्टों के लिए बाधाकारी हैं। जो पापी लोग नित्यानंद की निंदा करते हैं तो गंगा जी भी उन्हें देखकर भाग जाती हैं। अगर गंगा में स्नान करे तो उसे कोई फल नहीं मिलेगा, गंगा जी है ही नहीं वहां। जो नित्यानंद की निंदा करे तो गंगा जी भाग जाती हैं। नित्यानंद वैष्णवों के अधिराज हैं, अनंत देव हैं, ईश्वर हैं, महीधर शेष हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य के कुछ भी क्यों ना हो तो भी मेरे लिए तो उनके चरण ही परम धन है, वही मेरे हृदय में सदा निवास करें। सब वैष्णवों के चरणों में भी मेरी यही मनोकामना है कि नित्यानंद प्रभु मेरे इष्ट हों। तो इस तरह से हमने कुछ सुना नित्यानंद का चरित्र, और हमने चर्चा ये इस श्लोक पर की थी कि जो सन्यासी होता है, परमहंस होता है, तो वो उन्मत्त बालक की तरह करे, और ये कलयुग के लिए नहीं है, ये दूसरे युगों के लिए है। कलयुग में प्रचार के लिए संन्यास लिया जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया प्रचार के लिए, है ना। नित्यानंद प्रभु जो है वो दिखा रहे हैं वो स्थिति जो चैतन्य के प्रेम में होती है। तो वो पहले के युगों में जो परमहंस संन्यासी होते थे तो भगवान का वो साक्षात दर्शन करते थे। तो नित्यानंद प्रभु जैसे परमहंस संन्यासी तो चैतन्य के प्रेम में जो है पागल रहते हैं, तो उसी प्रकार से परमहंस सन्यासी होते हैं जो दूसरे युगों में तो भगवान की संगति में वो रहते हैं। सामान्य लोग नहीं देख सकते, अभी यहाँ तो सामान्य लोग भी देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु, लेकिन परमहंस सन्यासी को जो है परमहंस सन्यासी सामान्य लोग जो है नहीं देख पाते हैं कि वो परमहंस सन्यासी के साथ भगवान है, लेकिन भगवान लीला करते हैं और वो जो है बालक की तरह जो है जो परमहंस सन्यासी है वो हंसता भी है, और कभी रोता भी है, और कभी लोटपोट होता है, और कभी पागल की तरह चेष्टा करता है। तो ये जो श्लोक है इसमें नारद जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि परमहंस सन्यासी को कैसा होना चाहिए, है ना। लेकिन ये शिक्षा किस समय के लिए है? दूसरे युगों के लिए है, है ना। द्वापर युग और दूसरे युग उनके कलयुग के लिए नहीं, ठीक है ना। तो आज के श्लोक पर हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में, और अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोग उठ के मत जाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है कि हम मंथन करें और विचार करें। जैसे मंथन करने से अमृत निकला था, है ना, उसी प्रकार से कथा का मंथन करने से और अमृत मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ये मत सोचिए कि अब क्लास समाप्त हो गया, अब उठ के चले जाएं, ठीक है ना। तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन, कोई विचार, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहां पर बताया गया है अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो, ये विरोधाभास, एक अव्यक्त है दूसरा व्यक्त है। अव्यक्त लिंगो का मतलब क्या है, कौन बताएगा? अव्यक्त लिंगो, अव्यक्त लिंगो का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? हाँ जी, यहां पर है परमहंस सन्यासी, सन्यासी के चिन्ह धारण ना करें। सन्यासी के चिन्ह क्या होता है? दंड है, कमंडलू है, है ना, दंड कमंडलू, ये सब सन्यासी के चिन्ह होते हैं, है ना। तो वो जो है जैसे चादर है, है? तो सन्यासी का ये चिन्ह है। तो परमहंस सन्यासी जो है अगर ऐसे चिन्ह ना धारण करे, सन्यासी के चिन्ह ना धारण करे, है ना, तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि वो चिन्ह धारण करे अव्यक्त लिंगो। तो एक चीज अव्यक्त है यानी चिन्ह, सन्यासी के चिन्ह, सन्यासी चिन्ह देख करके लोग सम्मान करते हैं, तो उसको सम्मान की आवश्यकता नहीं है, तो सन्यासी के चिन्ह नहीं धारण करता। लेकिन व्यक्त अर्थ हो, व्यक्त अर्थों का क्या मतलब है, व्यक्त अर्थों का क्या मतलब है? कौन बताएगा? अव्यक्त लिंगो व्यक्त अर्थ हो। हाँ जी माता जी, हाँ, उसका जो है भाव, जो भगवान के प्रति उसका प्रेम है, वो तो प्रकट होता ही है। जो समझने वाले वो समझ लेंगे कि कितनी ऊंची स्थिति है। सामान्य लोग ना जाने, लेकिन वो अपनी ऊंची स्थिति में रहता है, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है उसको। यहां पर व्यक्त अर्थ हो, एक अव्यक्त है दूसरा व्यक्त है। इसी प्रकार से दूसरा विरोधाभास क्या है, मनीषी उन्मत्त बालवत्, मनीषी होते हुए भी उन्मत्त बालक की तरह रहता है। और मनीषी जो है बिल्कुल कैसा होता है, गंभीर, शांत, है ना, विचारशील, ये है मनीषी। और उन्मत्त बालक बिल्कुल उल्टा होता है, बच्चा बिल्कुल उन्मत्त है, चंचल बालक, तो बिल्कुल उल्टा है। तो होता तो है मनीषी, उन्मत्त बालक की तरह दर्शयत, यानी वो दिखाता है अपने को, है। तो सामान्य जनता नहीं जानती कि ये मनीषी, हाँ, तो ये विरोधाभास, दूसरा विरोधाभास। तीसरा विरोधाभास क्या है, कबीर मुंह के बद, श्लोक है ना, कबीर मुंह के बद, कवि होते भी मुंह के समान, क्या मतलब, यहां भी विरोधाभास है, कवि वो है लेकिन मुंह के समान अपने को दिखाता है। मुंह का मतलब गूंगा, और कवि का मतलब वक्ता, बहुत बड़ा वक्ता, कि कई दिनों तक भी बोलता रहे, उसके पास इतना विद्वता है कि कई दिनों तक भी बोल सकता है, इतना है, लेकिन गूंगे की तरह रहे। तो तीन विरोधाभास इस श्लोक में, तीन विरोधाभास हैं, अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो, कि चिन्ह जो है उसके छिपा लेता है, चिन्ह नहीं प्रकट करता अपने, लेकिन जो अपना अर्थ है, अपना जो असली जो उसका लक्ष्य है वो दिखाता है लोगों को, व्यक्तार्थ हो। और मनीषी उन्मत्त बालवत, मनीषी है वो गंभीर है, मननशील है, लेकिन उन्मत्त बालक की तरह अपने को दिखाता है। और कबीर मुंह के बद, कवि होते हुए भी मुंह के बद, यानी गूंगा, गूंगे की तरह रहता है ना। तो सुखदेव गोस्वामी का भी इसी प्रकार चरित्र है, है? कि सामान्य जनता के बीच में अपने को दिखाते हैं पागल, गूंगा। जड़ भरत का भी इसी प्रकार का चरित्र है कि सामान्य जनता के बीच में ऐसे ही रहते हैं, लोग सोचते हैं कि बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, और भगवान ऋषभ देव भी परमहंस की स्थिति में, लेकिन वो भी जो है मतलब ऐसे अपने को दिखाते हैं पागल, जैसे सिर फिरा हो ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो ये सब जो है मतलब परमहंस सन्यासी के का कर्तव्य कर्तव्य बता रहे हैं। लेकिन ये कर्तव्य हमने चर्चा की कि कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में परमहंस सन्यासी हम लोग प्रभुपाद को हमेशा बोलते हैं, क्या है तो जयकारा बोलते हैं, तो परमहंस परिव्राजकाचार्य बोलते हैं ना, परमहंस है ना। तो अब आप सोचिए कि भाई परमहंस प्रभुपाद परमहंस ले, वो क्यों समाज में जो है वो रहते थे हैं, और कैसे रहते थे, बिल्कुल श्रेष्ठ मनीषी की तरह और कवि की तरह वक्ता खूब प्रचार करते थे, है ना। तो इसका क्या कारण है, क्या कारण है कि जो परमहंस सन्यासी के जो कर्तव्य यहाँ बताए हैं, तो प्रभुपाद परमहंस सन्यासी थे लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं। वो तो नहीं दिखा रहे अपने को पागल की तरह या बिल्कुल गूंगा चंचल बालक की तरह, प्रभुपाद तो नहीं दिखा रहे हैं। इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा? है जी, कलयुग में, कलयुग में सन्यास जो लिया जाता है वो प्रचार के लिए लिया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया प्रचार के लिए, तो अपने को ऐसे नहीं दिखलाया, है ना, शांत गंभीर वक्ता। और प्रभुपाद ने इसी तरह से किया, है ना। तो प्रचार के लिए सन्यास लिया जाता है, है ना। तो दृष्टियां दर्शयन नृणाम, तो अपनी दृष्टि से जो है लोगों को अपने अपना ऐसा दिखाए। तो दूसरी जगहों में प्रचार के लिए सन्यास नहीं लिया जाता था, दूसरी जगह में प्रचार के लिए सन्यास नहीं लिया जाता था, क्यों, इसका क्या कारण है, कौन बताएगा? है राजर्षि लोग जो है जब राजा होते थे तो वो अपने जो है राज्य में प्रजा के ऊपर वो जो है शासन करते थे और धर्म के अनुसार शासन करते थे। अधर्म का कोई अगर आचरण करे उसको दंड देंगे, हाँ। तो ऐसे राजा जब होते थे तो फिर सन्यासियों को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, सन्यासी अपने जो है अपने लक्ष्य में स्थित रहे। लेकिन कलयुग में कैसे राजा हैं, कलयुग में कैसे राजा हैं, शूद्र म्लेच्छ, शूद्र और म्लेच्छ राजा होते हैं। तो वो तो धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, वो स्वयं अधार्मिक होते हैं। कलयुग में जो लक्षण है कलयुग का वो है राजा अधार्मिक हो। तो राजा अधार्मिक होंगे तो फिर जनता को जो है फिर कौन शिक्षा देगा, जनता को कौन शिक्षा देगा। इसीलिए प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे दे जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, क्यों राजा की ओर से प्रशासन की ओर से कोई उपदेश है ही नहीं, तो आप जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो। तो हर व्यक्ति को और सन्यासी को विशेष रूप से उपदेश करना चाहिए, लेकिन सबको उपदेश करना चाहिए। आमार आज्ञा गुरु भैला तार, स्त्रियों को और बच्चों को और बूढ़े को जवान को सबको गुरु बनना है। आमार आज्ञा गुरु, भगवान के देह में हमारी आज्ञा से गुरु बनो, क्योंकि राजा अगर अधार्मिक है तो वो थोड़ी धर्म का उपदेश करेगा। तो फिर आवश्यकता किस चीज की है, कि हम जो है हम उपदेश करें। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखें उसको कृष्ण का उपदेश करें, है ना। तो ये जो है नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ये उपदेश दे रहे हैं, है ना। और ये कर्तव्य परमहंस सन्यासी की ये कर्तव्य है, ये बता रहे हैं। अब चार प्रकार के सन्यासी हैं, चार प्रकार के सन्यासी कौन 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 से हैं, कौन बताएगा, कोई बताएगा? चार प्रकार के सन्यासी, परमहंस तो सबसे ऊपर की स्थिति है, और उसके ऊपर कुटीचक और बहुदक, परिव्राजक और परमहंस, है ना। तो परमहंस का ये कर्तव्य है, लेकिन कुटीचक का ये कर्तव्य नहीं, कुटीचक ये अलग कर्तव्य है। कुटीचक क्या करता है, अपने गांव से बाहर जो है कुटिया बना लेता है, उसमें रहता है गांव से बाहर। तो अपने गांव अपने परिवार वालों से अपना कुछ संबंध नहीं रखता, कुटिया बना लेता है रहता है, तो उसके परिवार के लोग हैं या कोई जो है उसको दे देते हैं खाना पीना, तो अपना खाता पीता भजन करता है और गांव से जो है अलग दूर रहता है, कुटीचक है। लेकिन फिर वो कुटीचक अब कुछ भगवान में उसका विश्वास हो गया तो फिर वो कुटीचक से आगे क्या बनता है, बहुतक। तो बहुतक का मतलब क्या है कि अलग अलग तीर्थों में वो भ्रमण करता है। बहु माने बहुत, उदक माने जल, तो जहाँ जल है मतलब तीर्थ तीर्थों के जल है, तो वहां पर वो जो है यात्रा कर तीर्थों की यात्रा करता है ना। प्रचार का कोई यहाँ इरादा नहीं है, क्योंकि दूसरे योगों के लिए दूसरे योगों में सन्यास जो है प्रचार नहीं होता, तो बहुधा वो तीर्थों में यात्रा करता है। तो तीर्थों में निवास करेगा कुछ दिन, फिर इधर इधर निवास करेगा है? तो वहाँ तीर्थों में जो है मतलब लोग होते हैं तो कुछ देते हैं खाने पीने को, तो उसका निर्वाह हो जाता है तीर्थों में। तो इतना जो है उसका मतलब आगे बढ़ाओ कुटीचर से बहुत बन गया था। लेकिन फिर उसके आगे जब उसका भगवान में और विश्वास बढ़ जाता है, भगवान में और विश्वास, तो परिव्राजक अब वो किसी भी स्थान में जाए, तीर्थ स्थान हो ना तीर्थ हो, किसी भी स्थान में जाए कि उसको पता चल गया भगवान देंगे। जब तक उसको भगवान में विश्वास नहीं था तो वो कुटीचक बना, फिर थोड़ा भगवान में विश्वास हुआ तो बहुधक बन गया। अब भगवान में और विश्वास हो गया कि कहीं भी रहूं तो मुझे भोजन मिलेगा, तो फिर परिव्राजक, तो यात्रा करता है इधर दिया यात्रा करता है, किसी भी घर में खड़ा हो जाएगा है ना, तो जो है कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से परिव्राजक होता है। और फिर परमहंस, तो यहाँ पर परमहंस का जो है ये वर्णन किया है नारद जी ने वर्णन किया है ना। तो नारद जी जो है यहाँ युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में उपस्थित हैं, युधिष्ठिर महाराज के राजसु यज्ञ में उपस्थित हैं, और सातवां स्कंद जो है ये पूरा का पूरा जो है ये नारद युधिष्ठिर संवाद है, पूरा का पूरा नारद युधिष्ठिर संवाद है। राजसु यज्ञ में जितने राजा हैं सब सुन रहे हैं, जैसे कि यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, तो इससे भी ज्यादा राजाओं की संख्या, और राजा ही केवल रहा है, पूरी पृथ्वी भर के राजा एकत्रित हुए। राजसु यज्ञ का मतलब होता है कि राजाओं से ही जो है सब काम कराया जाता है, यज्ञ का कोई सेवा जो है और किसी से नहीं होती, राजा लोग ही सेवा करते हैं, चाहे भोजन परोसने का काम हो है ना, और भोजन बनवाने का काम हो, दान देने का कार्य हो, अतिथियों की सेवा करने का कार्य हो, नीचे से नीचे कार्य में ही राजाओं से करवाए जाते हैं। और कोई इतना शक्तिशाली राजा हो तो वो इस राजसु यज्ञ को कर सकता है। और युधिष्ठिर महाराज राजसु यज्ञ इसलिए कर रहे थे कि संसार को दिखाना चाहते थे कृष्ण का भक्त जो है इतना शक्तिशाली भी हो सकता है, और इस प्रकार से सब राजाओं को वो ये प्रचार करना चाहते थे कि चूंकि मैं कृष्ण के आश्रित हूँ तो मैं ये यज्ञ कर सकता हूँ कि पूरी पृथ्वी भर के राजाओं को जो है नौकर बना सकता हूँ। सब राजा लोग जो है बैठे सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं है? नाराज जी सुना रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, और सब राजा लोग सुन रहे हैं। और कोई काम नहीं है, सब राजा, बहुत बड़ा प्रचार कार्य हो रहा है। तो राजा जो है इतना बड़ा प्रचार कर सकता है कि अपने राज्य में जनता को जो है भक्त बनाता है, और इतना शक्तिशाली राजा कि पूरी पृथ्वी भर के राजाओं को भी भक्त बना सकता है। और फिर ये जो राजा हैं ये भक्त बन जाएंगे तो अपने राज्य में भी क्या करेंगे, सबको भक्त बनाएंगे, तो पूरी पृथ्वी में प्रचार। तो सन्यासी का कोई भार नहीं होता था, इसलिए ये जो इस्कॉन जो ये आंदोलन है ये दूसरी जगहों में नहीं होता है, कलयुग में ही चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन ये कलयुग में ही होता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में जो है ये संकीर्तन आंदोलन स्थापित किया है, प्रभुपाद ने जो है इसका नामकरण किया है ना। लेकिन राजा का, अगर राजा ये भार ले ले तो फिर उसके लिए कोई परिश्रम ही नहीं, कितना प्रचार होगा। तभी तो हम लोग किसी को भक्त बनने के लिए कहते हैं तो वो कहता है तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मैं क्यों भक्त बनूं। तो कई लोग ऐसे, राजा बोलता है तो फिर वो नहीं बोल सकता, राजा बोलता है उसके साथ साथ दंड भी रहता है, अगर नहीं मानोगे तो दंड, या फिर हाथ पीछे से हाथ बांध करके राज्य से बाहर निकाल दे। राजा के पास सब शक्तियां होती हैं, इसलिए राजा के द्वारा जब धर्म का प्रचार होता है तो फिर जो है सबको चाहे डर के और चाहे हंस के ये मानना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, धर्म का आचरण करना ही पड़ेगा, चाहे डर के करो या हंस के करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। अभी तो यही है, प्रभुपाद कहते थे कि अगर नहीं मानते हैं तो जाओ नरक में, हम क्या कर सकते हैं, हमने मंदिर खोला है नहीं आते हैं, नरक में जाना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। राजा के राज्य में होता है कोई व्यभिचार नहीं, कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई नशा नहीं, कठोर कठोर नियम बन गया। तो राजा के द्वारा जो है बहुत, कल श्रीनिवासाचार्य का आविर्भाव था तो हमने चर्चा की थी कि राजा के गुरु बन गए, राजा वीर हमवीर के गुरु बन गए श्रीनिवासाचार्य, और गुरु बन गए तो फिर जो है जो चाहे वही सब कार्य सब आसान हो गया। इसलिए छह गोस्वामी की पुस्तकों की जो है लिखाई और उनकी जो है नकल कितनी हुई, कितनी पुस्तकें जो है लिखी गई, कि राजा के द्वारा कोई कार्य हो तो फिर बिना परिश्रम के कितना कार्य हो जाता है। और पूरी जनता, नगर की पूरी जनता वैष्णव बन गई, सभी लोग ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते, चार नियमों का पालन करते, माला जप करते, सब नियमों का पालन करते, तो राजा के द्वारा होता है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभु।